मेरे नींद और चैन उड़ाकर तुम्हें नींद आ रही है, तो जाओ सो जाओ। इतना कहकर शान ने फोन काट दिया। हिकारत भरी नजरें शराब की बोतल पर डाली, फिर उठकर जाकर बेड पर पड़ गया और फोन में आरवी की फोटो निकालकर देखने लगा। कानों में कुछ शब्द गूंजने लगे। मुझे बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप नफरत की आग में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको या तो कुछ नजर नहीं आ रहा या आप कुछ देखना ही नहीं चाहते, इसीलिए आंखों के सामने मौजूद सच्चाई को भी झुठला रहे हैं। मुझे डर तो बस इस बात का है कि जब आपके आंखों पर बंधी नफरत की ये पट्टी खुलेगी और हकीकत आपके सामने आएगी, तब तक कहीं आप नफरत और बदले की इस आग में अपना सब कुछ जलाकर भस्म ना कर लें, कहीं आप बदले की भावना में इतना दूर ना निकल जाएं कि जब लौटने का सोचें तो सभी रास्ते बंद हो चुके हों, कहीं आप सच्चाई को पहचानने में इतना वक्त ना लगा दें कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आप पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। नफरत है ना आपको मेरे चेहरे से, कभी देखना नहीं चाहते ना आप मुझे, पर देखिएगा एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप मेरे इसी चेहरे को देखने के लिए तरस जाएंगे, पर उस वक्त आपके लाख चाहने पर भी आपको इस चेहरे की एक झलक तक देखनी नसीब नहीं होगी। शायद तब आपको मेरी कदर समझ आए, पर तब तक मैं नहीं रहूंगी आपके पास और उस वक्त आप पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकेंगे। ये सब आरवी की कही बातें थीं जो उसने कभी मायूस होकर शान से कही थीं, पर उस वक्त शान ने इन पर ध्यान ही नहीं दिया। पर आज उसे शिद्दत से अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, एहसास हो रहा था उस तड़प का जो आरवी ने महसूस की होगी ये सब कहते हुए। आज असल मायनों में वो आरवी के दर्द को समझ पा रहा था, महसूस कर पा रहा था, और आज उसे अपनी गलतियों का ना सिर्फ एहसास हो रहा था बल्कि पछतावा भी हो रहा था। पर अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वक्त निकल चुका था। आरवी की फ़ोटो देखते हुए वो यही सब सोचता रहा, जाने कब उसकी आँख लग गई। और दूसरी तरफ आरवी का भी यही हाल था, शान की बातें याद करते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपने आंसू पोंछे और फ़ोन टेबल पर रखकर अंशु को अपनी बाहों में भरकर लेट गई। आधी रात बाद उसको कहीं नींद आई। यूं ही दिन गुजरने लगे। आरवी को अपने घर आए हुए लगभग 3 हफ्ते हो चुके थे। अब वो लगभग ठीक हो गई थी। जब डॉक्टर के पास जाना था तब अर्जुन आया था उसे लेने, और उसी दिन उसने अनुपमा जी के हाथ का बना खाना बड़े ही चाव से खाया था। अंशु के वजह से आरवी के लबों पर मुस्कान रहा करती थी। छाया के आने से अनुपमा जी की काफ़ी मदद हो गई थी और आरवी को भी पूरा आराम मिला था, जिसके वजह से वो जल्दी ही ठीक हो गई थी। फिर छाया और अनुपमा जी ने उसका ध्यान भी खूब रखा था। आरवी अब अंशु से जुड़े काम खुद करने लगी थी, जबकि घर का काम छाया ने संभाल लिया था, जिससे अनुपमा जी को भी आराम मिल जाता था, पर रसोई वही संभालती थी। शान दिन में 2-3 बार आरवी से फ़ोन करके उससे बात कर लिया करता था। शान की तरह वो उसके कॉल को इग्नोर नहीं किया करती थी, फ़ोन उठा लेती थी पर या तो खामोश रहती या फिर बेरुखी से बात करती। शान जैसा नाप तोल कर बोलने वाला इंसान ही आजकल बातें बनाने लगा था। अपनी बातों से वो आरवी के मन से गुस्से को निकालने की कोशिश करता था ताकि गुस्सा खत्म हो और वहां वो अपनी जगह बना सके। आरवी के कहे अनुसार शान इन दिनों एक बार भी उसके सामने नहीं आया था। लंच ब्रेक में स्कूल जाकर अंशु से मिल लेता था, छुट्टी में उसको खुद घर छोड़ता पर बाहर से ही चला जाता, और सुबह ड्राइवर आता उसको स्कूल लेकर जाने। आरवी के घर पर लगभग सभी से बात होती थी। बीच बीच में वो सब उससे और अंशु से मिलने भी आए थे, पर किसी ने उसे वापस चलने को नहीं कहा और ना ही अनुपमा जी के सामने आरवी के यहाँ रहने की असल वजह ही जाहिर की। अमरजीत जी और आरवी के बीच जो गलतफहमी की दीवार थी वो भी गिर चुकी थी, तो आरवी की उनसे भी बात हो जाया करती थी। अब वो भी लगभग ठीक हो चुके थे, पर अर्जुन ने उन्हें आराम करने को कहा था। अर्जुन ने अपना ऑफिस संभाल लिया था, जिसके बारे में जानकर आरवी ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया था। रश्मि और रेहान की शादी को अब बस कुछ ही दिन बचे थे, 3 दिन बाद से फंक्शन शुरू होने थे। आज आरवी को रश्मि अपने साथ शादी की शॉपिंग पर लेकर जाने वाली थी, अपने लिए कुछ जरूरी चीजें लेनी थी और आरवी को शादी और बाकी फंक्शन के लिए कपड़े दिलाने थे। सुबह के 9 बज रहे थे, अंशु स्कूल जा चुकी थी, छाया किचन का काम कर रही थी और आरवी अनुपमा जी के साथ आंगन में बैठी थी। वो अपने फोन में कुछ कर रही थी, तभी अनुपमा जी की आवाज उसके कानों में पड़ी। आरवी बेटा, आपको यहाँ आए इतने दिन हो गए, अब तो आप ठीक भी हो गई हैं, अपने घर वापस कब जाएंगी आप? उनका सवाल सुनकर आरवी ने चौंकते हुए उन्हें देखा। इन दिनों में कई बार वो उससे ये सवाल कर चुकी थी, पर हर बार आरवी किसी न किसी तरह बात बदल दिया करती थी। पर आज वो उनका सवाल सुनकर परेशान हो गई, क्योंकि जवाब क्या दें ये समझ नहीं पा रही थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही डोरबेल बज उठी और उसको वहां से जाने का बहाना मिल गया, तो उसने तुरंत उठते हुए कहा, जरूर रश्मि आई होगी, मैं देख कर आती हूँ। आरवी झट से वहां से निकल गई, पर अनुपमा जी के मन में शक पैदा होने लगा। कई दिनों से वो नोटिस कर रही थी कि आरवी इस सवाल से बच रही है। घर से सबके आने पर भी कोई आरवी के वापसी का जिक्र नहीं करता था, सब आते थे पर शान नहीं आता था, और यही सब बातें उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही थी कि कुछ तो है जो उनसे छुपाया जा रहा है। आरवी ने दरवाजा खोला तो सामने सच में रश्मि खड़ी थी। उसे देखकर आरवी ने चैन की सांस लेते हुए कहा, आज तो तू बिल्कुल सही टाइम पर आई है, बचा लिया तूने मुझे।
उसकी बातें सुनकर रश्मि ने चौंकते हुए सवाल किया, मैंने तुझे किससे बचा लिया? माँ के सवाल से। अभी अभी वो मुझसे पूछ रही थी कि वापस कब जाऊंगी, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दूं, कैसे उनका ध्यान भटकाऊं, और ऐन वक्त पर तू आ गई मुझे बचाने। आरवी एक सांस में ही सब कह गई और उसको देखकर मुस्कुरा दी। वहीं उसकी बात सुनकर रश्मि के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए और उसने भौं उचकाते हुए गंभीरता से सवाल किया, तूने आंटी को अब तक नहीं बताया?
नहीं।
क्यों? रश्मि का सवाल सुनकर आरवी ने उलझन भरे लहजे में कहा, पता नहीं, कोशिश बहुत बार की पर बता ही नहीं पा रही। अगर उन्हें बताया कि घर छोड़कर आई हूं तो वो वजह पूछेंगी, और जो मेरे साथ वहां हुआ वो सब बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। परेशान नहीं करना चाहती या सच बताकर जीजू की इमेज उनकी नजरों में खराब नहीं करना चाहती? रश्मि की बात सुनकर आरवी कुछ पल को खामोश रह गई, फिर बिना किसी भाव के बोली, ऐसा ही सोच ले, बहुत विश्वास करती है माँ उनकर, सच पता चलेगा तो उनका ना सिर्फ विश्वास टूटेगा बल्कि मेरी तकलीफ के बारे में जानकर उनका दिल भी टूट जाएगा, और मैं उन्हें अपनी वजह से और परेशान नहीं करना चाहती। पर जब तूने जीजू से अलग होने का फैसला ले ही लिया है तो छुपाने का क्या मतलब हुआ? आज नहीं तो कल आंटी को सच बताना ही होगा, और बाद में बताने पर उन्हें ज्यादा तकलीफ होगी, तो बेहतर है कि आज ही बता दे। रश्मि की बात सुनकर आरवी खामोश रही और उसने सर झुका लिया। रश्मि कुछ पल उसके चेहरे को देखती रही, फिर आगे बोली, आरवी कहीं ऐसा तो नहीं कि तू खुद अपने फैसले को लेकर श्योर नहीं है? अभी गुस्से में उनसे अलग रह रही है, पर मन में अब भी कहीं एक उम्मीद है कि जीजू तेरी नाराजगी दूर करके तुझे वापस उस घर में पूरी इज्जत के साथ अपनी पत्नी बनाकर लेकर जाएंगे।
ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जल्दी ही माँ को बता दूंगी, तू अंदर चल। आरवी ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया तो रश्मि मुस्कुरा उठी और अंदर आ गई। आरवी ने गहरी सांस छोड़ी और दरवाज़ा बंद करके वो भी अंदर आ गई। रश्मि ने अनुपमा जी को नमस्ते किया और उनके पास बैठते हुए बोली, आंटी आज शॉपिंग के बाद मैं आरवी को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी और शादी तक वो वहीं रहेगी, आपको कोई एतराज़ तो नहीं?
नहीं बेटा, हमें भला क्या एतराज़ होगा, आप दामाद जी से पूछ लीजिए, उनके भी दोस्त की शादी है, उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं।
उनसे मैंने पहले ही पूछ लिया है और उनकी परमिशन भी मिल चुकी है, और अब आपने भी हाँ कह दी है तो ये तय रहा कि शादी तक आरवी मेरे ही साथ रहेगी। उसकी बात सुनकर अनुपमा जी मुस्कुरा दी। वहीं आरवी ने हैरानी से उसे देखा तो उसने मुस्कुराकर अपनी बाई आंख दबा दी। रश्मि ने अब आगे कहा, और आंटी मम्मी ने कहा है कि आरवी के साथ आपको भी चलना है, उन्हें आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, तो आप अपना सामान पैक कर लीजिएगा।
अच्छा बेटा, हम भी चलेंगे।
यूं ही रश्मि कुछ देर उनसे बातें करती रही, फिर अचानक ही उसका फ़ोन बजा और उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा आंटी शाम को मिलती हूँ। उन्होंने हामी भरी तो रश्मि ने आरवी को देखा, फिर दोनों अपना पर्स लेकर बाहर की तरफ चल दिए। दोनों गेट खोलकर बाहर निकले और आरवी की नज़र सीधे सामने खड़ी कार पर चली गई। शान की कार को सामने खड़े देखकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। अगले ही पल कार का दरवाज़ा खुला और शान ने बाहर कदम रखा। दूसरे तरफ से रेहान बाहर निकला। पूरे 3 हफ्ते बाद आरवी और शान एक दूसरे के आमने सामने थे। इतने वक्त बाद वो एक दूसरे को देख रहे थे कि निगाहें एक दूसरे के चेहरे पर जम सी गई थीं। आरवी भी इस पल में अपनी नाराज़गी भूलकर एकटक शान को देखने लगी, जो पहले से कुछ कमज़ोर सा लग रहा था। रश्मि और रेहान ने उन्हें देखा, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आरवी जो शान को निहारने में खो सी गई थी, अचानक ही उसको ध्यान आ गया कि वो क्या कर रही है, और उसने हड़बड़ाहट में उस पर से अपनी निगाहें फेर लीं। शान भी अब होश में लौट आया और आरवी के नाराज़गी भरे चेहरे को देखकर हौले से मुस्कुरा दिया और कदम उसके तरफ बढ़ा दिए। आरवी भले उसे ना देख रही हो, पर उसके अपने तरफ बढ़ते कदमों का एहसास था उसे, और उसके हर बढ़ते कदम के साथ आरवी की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। शान जैसे ही उसके करीब पहुंचा, आरवी ने अपने दुपट्टे पर अपनी मुट्ठियों को कस लिया, और जैसे ही उसके तरफ निगाहें घुमाकर कुछ बोलने को हुई, शान ने उसके बगल से निकलते हुए कहा, नमस्ते माँ। आरवी की आंखें हैरानी से फैल गईं ये सुनकर। उसने तुरंत पलट कर देखा तो अनुपमा जी पीछे ही खड़ी थीं। टू बी कंटिन्यूड।